अगली टिप लेते हैं, ये ना देखो कि लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, ये देखो वो अल्लाह के साथ क्या कर रहे हैं। इतना प्यारा ये नुस्खा है, यकीन करें कि हमारी असल खुल जाती है। हम सारी ज़िंदगी ये देखते रहते हैं कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, फलाने मेरे साथ ये किया वो किया, फलां बड़ा अच्छा है क्योंकि वो मेरे साथ बहुत अच्छा है, फलां बड़ा ख़राब है मेरे साथ बड़ा ख़राब है। हालांकि देखना ये कि वो अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक कैसा है। किताबु जोहत में इमाम अहमद की रिवायत सुन लीजिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी हदीस कुदसी है, इब्ने आदम तेरे ऊपर ताज्जुब है, मैंने तुझे पैदा किया लेकिन तू मेरे गैर की इबादत करता है, यानी शिर्क करता है। मैं तुझे रोज़ी देता हूँ, तू मेरे अलावा किसी और का शुक्र अदा करता है। मैं तुझे नेमतें देता हूँ, तुझसे बेनियाज हूँ, तू मासीयतें करता है यानी नाफरमानियाँ करता है और मेरी नाराज़गी मोल लेता है, जबकि तू मेरा मोहताज और फ़कीर है। मेरा खैर तेरी तरफ उतरता है, तेरा शर मेरी तरफ ऊपर चढ़ता है। यानी सोच के करो जो मेरे साथ कर रहे हो, कल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में लिखने वालों ने कहा कि उन्होंने 30 लोगों का इलाज किया, बहुत से अंधों को बीना कर दिया, लेकिन वो सब के सब आपके दुश्मन हो गए। लिखिएगा, किसी इंसान की बदबख्ती की अलामत यह है कि वो मुहसिनों के साथ बुरा सलूक करे, और इसकी बदतरीन मिसाल वो लोग हैं जो अपने माँ बाप का हक नहीं देते। और उससे भी नीचे ले आइए तो माँ बाप के बाद उस्तादों के साथ गदर और धोखादही, और उन्हीं के बारे में कुछ गलत बातें कहने और मारूफ करने वाले भी आ सकते हैं। फिर इसी तरह हुक्मरान अच्छे हुक्मरानों को बुरा कह रहे हैं। तो ज़िंदगी का असूल बनाइए, अपने मामले को बीच में से निकाल दें और अल्लाह के मामले को सामने ले आइए, फिर आपको लोगों की असल दिखेगी। तो क्या सीखा, देखिएगा ज़रा सा इसको एक नए एंगल से, हमारे गम क्या हैं और अल्लाह के नबी और सहाबा के गम क्या थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम सूरत अलकहफ के बिल्कुल आगाज़ में आयत नंबर फ़लअल्लक़ बाख़िउ नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस या सफ़ा, लगता है आप तो खुद को ज़िबा कर देंगे इस गम पे कि ईमान क्यों नहीं लाते। यानी आप रंज खा के, असफ कहते हैं जिसको, हम कहते हैं ना सीने से धुआं निकलना, सेक निकलना, ये कैफियत आहे भरना। तो अल्लाह के नबी का गम था कि लोग शिर्क छोड़ दें। बुखारी की रिवायत अल्लाह के नबी की इस कैफियत को बताने वाली 6483, तुम पतंगों की तरह आग में गिरते हो, मैं कमर से पकड़ पकड़ कर तुम्हें निकालता हूँ। बारिश के बाद जो पतंगे निकलते हैं उसको सामने रखा जाए तो ये बात समझ आती है। यानी अल्लाह के नबी तो लोगों को हर मुमकिन तौर पे जहन्नुम से निकालना चाह रहे थे। हर गजवा जो आपके जरिए से हुआ, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए किया, अपनी ज़ात के लिए तो किसी से बदला भी ना लिया। सहाबा कराम को देख लीजिए, उनके गम क्या थे, इस्लाम गालिब हो, सगे रिश्तों को जंगों में कत्ल किया सिर्फ अल्लाह के लिए। आज उम्मत अपनी ज़ात के लिए हसास और अल्लाह और उसके दीन के लिए बेपरवाह है। अल्लाह हमें इस बेहिसी से बचा दे। अल्लाह के नबी का अख्लाक आज के मुसलमानों के रवैयों से तकाबुल में देख लीजिए। यहूद में से कोई आया और आपको सलाम अलैकुम कह गया, जिसका मतलब क्या था, तुम पर मौत आए। हज़रत आयशा सुन रही थी, वो गुस्से में बोली, अलैकुम वलानकुम वग़दिब अल्लाह अलैकुम, यानी तुमने अल्लाह के नबी को कहा ना तो तुमको मौत आए और तुम पर उसकी लानत हो अल्लाह की और गज़ब भी हो। तो आपने कहा कि आयशा नरमी इख्तियार कीजिए, नरम हुई अच्छी होती है, सख्ती और बदजुबानी से बचिए। हज़रत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी आपने इनकी बात नहीं सुनी, मुराद है कि देखिए ना मोहब्बत थी ना आयशा को अल्लाह के नबी से और ईमान का तकाजा भी था। कहते कि ये आपको मौत की दुआ दे रहे हैं, तो आपने कहा कि तुमने मेरा जवाब नहीं सुना, वालेकुम सेम टू यू, जो तुमने मुझे कहा वो तुमको मिले, और उनकी दुआ मेरे बारे में नहीं कबूल होगी लेकिन मेरी उनके बारे में कबूल हो जाएगी। खुलासा है ये बुखारी की रिवायत 6030 का। तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव ना हो, अपने बहुत ज़्यादा बदले ना लिया करें, कुछ चीज़ें अल्लाह पर डाल दें। इसके बरक्स आज हम मुसलमानों के रवैये देखें, कोई बुरा भला कह दे भड़ के जवाब देते हैं, कई दिन तक उदास रहते हैं, मुझे कह दिया। हम जितना अपने बारे में बात सुनकर खुश या उदास होते हैं ना, इतना हम अल्लाह की बात सुनकर भी नहीं होते। इसी तरह आप देखिए, अल्लाह के साथ शिर्क कुफर ना शुक्री का रवैया रखते हैं, मासियत का रवैया रखते हैं। लोग ये सब करें, हमारे माथे पे शिकन तक नहीं आती। और अपने लिए हसास, दूसरे मुसलमानों और अल्लाह के दीन के लिए बेहिस है। ये तो अल्लाह का हौसला है जो आपको मुझे बर्दाश्त करता है। करें क्या, लोगों को अल्लाह से जोड़ें, अल्लाह सब प्यारों से आपको जोड़ देगा। फिर इसी तरह की गम पैदा करें कि लोग जहन्नुम में ना चले जाएं। दीन के लिए हसासियत लाइए, लोगों की अपने साथ ज्यादतियों को दरगुजर करें। अल्लाह के मामले में अफरात और तफरीत पर उनका ज़मीर जगाइए। हम अना जगा कर उनको सोए हुए शेर की तरह जगा देते हैं और वो हमारे खिलाफ फिर कमेंट्स देते हैं। अमल के नुक्ते, हसर से हिफाजत की दुआएं मांगिए, डर निकाल दीजिए दिल से। इसी तरह बुरी बातों का जवाब खामोशी या बेहतर जवाब से दीजिए। अल्लाह की नज़र में बुलंद मुकाम पाने के लिए सब्र करना पड़ता है। अपनी ज़ात के लिए हसासियत यानी सेंसिटिविटी को ख़त्म कीजिए, दीन के लिए सेंसिटिव हो जाएं, लोगों को अल्लाह से जोड़िए और अल्लाह ताला का असल तारुफ करवाइए। और अगली टिप ले लीजिए, तंगी रिस्क से ना घबराएं, जो मेरा ख्याल है कि हमारे कल्चर में सबसे बड़े गमों में ही गम है। कारोबार नहीं चल रहा, जॉब छूट गई, हाथ बड़ा तंग है, बड़ा परेशान है, वजह तो साफ ज़ाहिर है, खर्चे जो बढ़ाए हुए हैं तो तंगियां तो होंगी, जितना मिलेगा उतना थोड़ा लगेगा। तो लिखिए, रिस्क की तंगी को वजह नहीं बनाना खुजन और गम की। अल्लाह वाहिद व यक्ता ही राजिक है, वही रोजी देता है और इसने इसका जिम्मा लिया। और आसमान में तुम्हारे लिए रोजी है और वो है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। लिहाजा जब रोजी का मालिक अल्लाह है तो मखलूक की चापलूसी क्यों, रोजी के लिए अपने आप को जलील क्यों किया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़मीन में जो भी जी रूह है इसकी रोज़ी अल्लाह पर है। पहली आयत है 12वें पारे की, सूरह हूद है। वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। और इसी तरह फरमाया, अल्लाह जो रहमत लोगों पर करता है इसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे रोक लेता है इसे कोई जारी नहीं कर सकता। तो क्या पता चला कि रिस्क की फ़िक्र छोड़ दें, खा के ही सोते हैं ना, कभी भूखे सोए। और सही मुस्लिम की रिवायत देखिए 6725 है कि जब नुतफ़ा 40 से 45 डेज़ के बिटवीन होता है ना, तो अल्लाह ताला माँ के रहम में एक फरिश्ते को भेजकर उसका रिस्क लिखवा देता। तो सूरत हूद की आयत 6 के साथ सही मुस्लिम की इस हदीस को जोड़ लें तो दिल से रिस्क का गम फिक्र ख़त्म होगा। करें क्या फिर, नंबर एक अल्लाह के ज़िम्मे है, इसको मान लीजिए। ठंडा दूध पी के सो जाएं, अल्लाह आपको रिस्क देगा जो भी उसने आपके लिए लिखा है। दूसरी बात, अल्लाह को खैरुर राज़िकीन समझिए। फिर इसी तरह से हराम में नहीं पड़ना, सिर्फ हलाल लीजिए। लोगों की चापलूसी नहीं करनी कि वो आपके रिस्क में इजाफा करें। मान लीजिए कि रिस्क मुकर्रर है और मांगना है तो सिर्फ मैंने अपने रब से मांगना है, मुझे किसी और से नहीं मांगना। अच्छा, बिलफर्ज रिस्क की तंगी है, आप मर्द की बात करते हैं, औरतें बेचारी हैं तो मौजें करती हैं। मर्द हैं बेचारे, 3-4 बच्चे भी हैं घर में, बुज़ुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, अब दवाइयाँ भी आनी है, रिस्क भी आना है, खाना पानी फीसें भी हैं, क्या करें। एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल दौरे कुरान से पहले एक कोर्स किया था, रिस्क की कुंजियाँ, ज़ादुल खैर में एक बुक पढ़ी थी, उससे फ़ायदा उठाइए। दूसरी बात है कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के हालात का मुताला करें। 2 2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन कभी चेहरे पे शिकन नहीं आई। आपकी बीवियाँ खर्च की कमी पर हल्का सा नाराज़ हुई, आपने उनसे इला किया। सूरत अलहज़ाब को पढ़िए, 22वें और 23वें पारे का शुरू आखिर। बेटी फातिमा गुलाम मांगने आई तो उसको और ही काम दे दिया कि ये तस्बीहात पढ़ो तो थकन दूर हो जाएगी, जिसको अब तस्बीहात फातिमी कहते हैं। जो माल आता वो खर्च कर देते हैं। फिर एक और चीज़ याद रखिए कि हराम के माल में ज़हनी सुकून नहीं है, कसरत हो जाएगी, बरकत नहीं रहेगी। और फ़र्क है, देखिए आपको मुर्दा बकरी $2 की मिले और हलाल बकरी, ज़िंदा बकरी $20 की मिले, कौन सी लेंगे? बस $2 भी क्यों ज़ाया करे कोई मुर्दा पे? तो हराम चाहे $1 का मिले, नहीं लेना, और हलाल चाहे $100 का मिले, वही लेना। अपने से नीचे वालों को देखिए, सदका करें, माल को बढ़ाएं, कमज़ोरों की दुआएं लें, इनकी वजह से रिस्क दिया जाता है। अपने माली बाबा की पे तो देखिए, वो क्या लेके जाता होगा घर में। और अल्लाह को बेहतरीन राज़िक समझते हुए इसी पे भरोसा रखें, और सबसे बड़ी बात है परेशान होना छोड़ दीजिए। और आप माओं को भी कहूँगी कि बेटों के रिज़्क की कमी पे परेशान ना हो, अल्लाह खिला पिला के सोएगा, अरबों रुपए की जायदादें हैं उनके नामों पे, और अल्लाह ने एक रात कभी भूखा नहीं सुलाया उनको और उनकी औलादों को। गम छोड़ेंगे तो रिस्क आएगा, ये भी याद रखिएगा। और इसकी तंगी रहे तो याद रखिए कि फ़ुकरा जन्नत में 500 साल पहले चले जाएंगे। इब्ने माजा की रिवायत से ये बात पता चलती है, 41:23। और अल्लाह के नबी की वो दुआ भी याद कर लीजिए कि अल्लाह मेरा हशर फ़ुकरा में करना, अहयनी मिस्कीनम व अमितनी मिस्कीनन वख्शुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। आपने कहा मेरा दिल होता है कि एक दिन खाऊं और शुक्र करूं और एक दिन भूखा रहूं और सब्र करूं। चलिए रिस्क को तो पीछे कीजिए, अगली टिप लीजिए, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब। अगला मिसरा आपको खुद ही आता होगा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जी, जितना ज़्यादा आप गमों तकलीफ़ों को टैकल करना सीख लेंगे ना, उतना ऊंचा उड़ेंगे, इसलिए कि बहुत से असबाब मसाइब को आसान कर देते हैं। मसलन अल्लाह ताला इन मसाइब पर अजर व सवाब देगा, क्योंकि फरमाया है कि सब्र करने वालों को इनका अजर पूरा पूरा बेहिसाब के दिया जाएगा। मुसीबत में मुबतला आप के अलावा और भी बहुत से हैं। शायर कहता है, अगर मेरे पास मेरे भाई को रोने वाले ज़्यादा न होते तो मैं अपने आप को कत्ल कर चुका होता। अपने दाएं बाएं देखिए, हर जगह मुसीबत के मारे ही मिलेंगे। जैसे अरबी की एक मिसल है कि बनू साद हर वादी में पाए जाते हैं, यानी मुश्किलात में जो लोग होते हैं, गरीब फकरा हर जगह होते हैं। फिर इसी तरह ये कहिए कि ये मुसीबत छोटी है, इससे बड़ी बड़ी आफतें भी होती हैं। और जुमला ये याद रखिए, जो नहीं है उसका क्या तذکرہ करूं, अभी लिस्ट नहीं पूरी हो रही उसकी जो है। हैव्स एंड हैव नॉट्स को जहन में ले आइए। और ये भी सोचिए कि ये मुसीबत बंदे की दुनिया में है, दीन में तो नहीं है, यानी रिस्क कम है, नेकियां तो कम नहीं है। और अल्लाह माफ़ करे हमें, हम रिस्क की तलाश में नेकियां छोड़ देते हैं, हालांकि नेकियों की तलाश में रिस्क खुद बहुत पाँव में आ जाता है। फिर इसी तरह से खुशगवारी के मुकाबले में मसाइब में तस्लीम व रज़ा बंदगी और अबूदियत की बड़ी दलील है, यानी आप खुशगवार हैं, गुड नाइस, इसके मुकाबले में आप दुखी हैं, मुसीबत बीमारी परेशानी, ये दूसरे मामले में तस्लीम व रज़ा और बंदगी और अबूदियत पे कायम रहना आसान है। खुशियों में तो हम बहकने लगते हैं, बल्कि अल्लाह माफ़ करे हमारा तो रवैया कुछ ऐसा होता है कि लो अब खुशियों में अल्लाह को नाराज़ नहीं करेंगे तो और कब करेंगे। और जितना ज़्यादा हम अल्लाह को खुशियों के मौके पे नाराज़ करते हैं, हमें कोई इस तरह करे तो हम तो कभी उसको मुंह न लगाएं, ये तो अल्लाह की शान है कि उसने हमें बर्दाश्त किया हुआ है। फिर इसी तरह अपने आप को ये यकीन दिलाइए कि मुकद्दर से दूर नहीं भाग सकती, मफर नहीं है, कोई हीला और चारा साजी मुमकिन नहीं, इसलिए सब्र ही इख्तियार करना है। और याद रखिए कि इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, मुमकिन है कि कोई चीज़ तुम्हें नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए खैर हो। आसान तक रहो शैयन बहु खैरुल्लकुम, तो अल्लाह ताला ने तो खुश रहने के लिए हमें बड़े तरीके सिखाए हैं, ये अलग बात है कि हम फिर इन चीज़ों से फ़ायदा भी उठाएं। तो तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जिसको ऊंचा उड़ने का शौक है ना, तो वो मुखालफतों की आंधी में सीना तान के खड़ा हो जाए। पैराशूट को जहन में ले आइए, हवाई जहाज को जहन में ले आइए, परिंदों के उड़ने से पहले परों को सुकेड़ने को जहन में ले आइए, आपको इंशाल्लाह सारी बातों का जवाब मिलने लगेगा। रिलैक्स रहें। और ये आयत 216 है अल बकरा, आसान तक रहो शैयन व हुवा खैरुल्लकुम। इसी तरह याद रखिए कि बुरे हालात आगे की आसानियों के लिए आते हैं। एक जुमला अक्सर सबीलुल जन्ना की स्टडी टिप्स में दिया करती इसलिए कहती हूँ कि जब यानी बिल्कुल बैठकर सामने बात होती थी, और वो सारी स्टडी टिप्स माशाल्लाह रिकॉर्डेड है। अब भी हम सबीलुल जन्ना में स्टूडेंट्स को शुरू के 2-3 वीक तक डेली एक दो मौके की मुनासिबत से स्टडी टिप्स देते हैं। फिर इसी तरह देखिए कि मूसा और खिजर के वाक़यात हमारे लिए मिसाल है, देखने में शर लगता था लेकिन असल में खैर थी। फिर यूसुफ की ज़िंदगी को देखिए, पहले कुआं फिर जेल आखिर में वज़ीर ख़जाना बने। जो कनान में रहकर ना मिलता अल्लाह ने मिस्र में दे दिया, तो अल्लाह के फैसलों पे राजी तो रहे। और सबसे बढ़ के सूरत बकरा की आखिरी आयतें, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, 286 बकरा। अल्लाह किसी को उसकी वसत से ज़्यादा नहीं आजमाते, अपने लिए भी कहा करें मेरे रब को पता है मेरी कितनी बर्दाश्त है। सब्र करके अच्छे दिनों का इंतज़ार करें क्योंकि ये इबादत है, और बुरे दिनों में अच्छे दिनों को याद करें और कहें वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, इट शल पास सून। वो बादशाह की अंगूठी याद कर लीजिए जो पीछे बताई थी। फिर इसी तरह बुरे हालात में ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, फ़ाल हो जाएं, क्रिएटिव हो जाएं, क्योंकि वक़ाब बादे मुखालिफ में और ऊंचा उड़ता है। फिर इसी तरह इस बात पर शुक्र करें कि आजमाइश दुनिया की थी, दीन की तो नहीं थी, वरना आज तो लोग हालात ज़रा सा नासाजगार होने पर दीन ही छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन मुश्किलों को अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया बनाएं। हज़रत अय्यूब की तरफ एक कॉल मंसूब किया जाता है किताबों में कि अल्लाह जब तूने सब दिया हुआ था, मेरा नरम गरम बिस्तर तैयार होता था, बीवी बच्चे दुनिया की रौनकें, बड़े मालदार थे ये, उस वक्त भी मैं तेरे लिए उठता था, तुझे याद करता था, तुझे पुकारता था। अब तो तूने अपने और मेरे बीच की सारी रुकावटों को ही दूर कर दिया, अब तो मुझे और लज़्ज़त आती है। तो लिहाजा अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया बने। फिर ज़रा दुआएं मांगिए, क्योंकि बंदे की दुआ में जारी आ जाती है दुख में तकलीफ़ में, और जितना आहो जारी आएगी उतना अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। और अगली टिप लीजिए, दूसरों का लुबादा ना ओढ़िए, अपने कपड़े ही अच्छे होते हैं। याद रखिए मोटे पतले बट अपने नाप के कपड़े कितनी बड़ी नेमत होते हैं, आप खुद इसका अंदाज़ा लगाते हैं। तो ज़िंदगी में हम दूसरों के साथ टैली करते रहते हैं अपने आप को, उनको ये मिला मुझे ये नहीं मिला। अच्छा बाज़ लोग फतवे भी देते हैं, लो जी इन्होंने नहीं दीन का काम करना तो कौन करेगा, और देखिए इनके तो हालात ही इतने अच्छे हैं और ये नहीं करेंगे तो ये। मान लिया आपको भी अल्लाह इतने अच्छे हालात दे दे, आप तभी करेंगे जब आप नियत करेंगे, इरादा करेंगे। लोग तो इतने केयर फ्री होने लगते हैं बाज़ दफ़ा कि उनको कोई परवाह नहीं रहती। तो याद रखिएगा हर एक के लिए एक रास्ता है, बस भलाइयों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। बिल्कुल दूसरे पारे के शुरू के दूसरे रुकू में आती है बात, इसी ज़ात ने तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाया है, तुम्हारे दर्जात एक दूसरे से बुलंद कर दिए। हर जमात अपना तरीका जानती है, लोग मुख्तलिफ सलाहियतों जहनों और तवानाइयों के मालिक होते हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का राज ही ये था कि आपने मुख्तलिफ सहाबा से इनकी सलाहियतों और इस्तेदादों के मुताबिक काम लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कुज़ा पर फ़ायज़ थे, यानी काजी थे। मास रज़ी अल्लाह अन्हु इल्म के शोबे में थे। उबई बिन काब कुरान के लिए, और ज़ैद फ़राइज़ के लिए, खालिद जिहाद के लिए, और हसान शेर व शायरी के लिए, और कैस बिन साबित खिताबत के लिए थे रदी अल्लाह अन्हुम अजमाई। बकौले शायर, सखावत को तलवार की जगह और तलवार को शबनम की जगह रखना मुजर ही साबित होता। गैर में डूब जाना, दूसरों की सिफात का लुबादा ओढ़ना, यह कत्ले नफ्स और ख़ुदकुशी है। लोगों की आदात, ज़ुबानों, रंगों और सलाहियतों का इख्तलाफ अल्लाह की निशानियों में से है, सूरत रूम में आता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी नरमी और लुत्फ़ व करम से मिल्लत अरब और उम्मत मुस्लिमा को नफ़ा पहुँचाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हों ने अपनी शिद्दत और सलाबत से इस्लाम और अहले इस्लाम की नुसरत की, यानी स्ट्रांगनेस थी उनमें। सुल्ब कहते हैं पुश्त को, बड़ी स्ट्रांग होती है ना कमर की हड्डी, उसी की तरफ इशारा है। लिहाजा आपकी भी जो सलाहियत है, लिखिए मेरी स्किल्स, मेरी सलाहियतें, मेरी खूबियाँ, जो मेरे पास हैं मैं इस पर राज़ी हूँ। लिखना आता है तो लिखती हूँ, बोलना आता है तो बोलती हूँ, सुनना आता है तो सुनती हूँ, कंप्यूटर चलाना आता है तो वो चलाती हूँ, बच्चों को देखना आता है तो वो देखती हूँ, खाना पकाना आता है तो वो देखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों तकाबुल करते हैं दूसरों से, कैसा बोलते, कैसा लिखते, कैसा अच्छा काम, कहाँ कहाँ इनका नाम, छोड़िए काम का एक काम लिखिए। ये की टिप देने लगी आपको खुश होने की, अपनी सलाहियत को पहचानिए, दी बेस्ट। आपको बस वो बहुत सारे कामों में डाला जाता है, अल्लाह भी डाल देता है, कभी हालात डाल देते हैं, कभी हमें खुद भी बड़ा शौक होता है। कर लिया तजुर्बा, अब बैठकर सोचिए व्हाट इज़ माय बेस्ट। अपने अंदर खो जाए, फिर अपनी खूबी को डिस्कवर कीजिए और फिर उसमें और स्किल्स डालिए और सीखिए, तरक्की दीजिए, नशो नुमा दीजिए, बस इससे फ़ायदा उठाइए और फ़ायदा पहुंचाइए। ये ज़िंदगी तजुर्बात के लिए नहीं है, ट्रायल एंड एरर की जगह नहीं। और ये इतना बड़ा की पॉइंट है कामयाब लोगों की ज़िंदगी को देखकर कि हर बंदा हर चीज़ में कामयाब नहीं होता। एक बंदा हर चीज़ में तो बिल्कुल ही कामयाब नहीं होता, जिसको आप और मैं कहते हैं वन मैन शो। चाबियां नहीं छोड़नी हाथ से, पकड़ी जाती नहीं है, गुथली में डालकर थैली में डालकर लटकाए फिरते हैं। छोड़ना नहीं है काम, ऐसा ना कीजिए। एक खूबी ढूंढिए अपनी, दी बेस्ट, और उसमें आप आगे चली जाए। दूसरे को मौका दीजिए, वो आपसे ज़्यादा अच्छा है। चलिए भैया मैं तो कर ही रही थी, मजबूरी थी, हालात थे, वक्त था, आप कीजिए क्योंकि आप मुझसे अच्छा करेंगे। और एक जुमला लिख लें, जो चीज़ आपसे ज़्यादा अच्छी को कर चुका है ना, अपना वक्त उसमें ना खपाइए। आप उससे फ़ायदा उठा लें, दूसरों को भी उससे फ़ायदा दे दें। आपकी थोड़ी सी कोशिश से अल्लाह आपको उतना ही अजर दे देगा जितना उसको देगा। नीयत अच्छी होगी तो उससे भी बढ़ा देगा। सारी ज़िंदगी दूसरों को कम्पीट करने में निकल जाएगी आपकी। क्यों अपने आप को बैक गियर में डालते हैं? फ़ायदा खुद भी उठाइए, दूसरों को उठाइए। और जब आप किसी की खूबी को मान जाते हैं ना, तो मुतमईन भी हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम नहीं, और स्पेशली दूसरा इदारा, दूसरा उस्ताद, दूसरा मसलक, दूसरी जमात, दूसरा गिरोह। एक दफ़ा बैठकर मानिए कि फलां मुझसे अच्छी बात कहता है, फलां का फहम मुझसे अच्छा है, फलां की हिकमत ज़्यादा है। पहले तो मानिए, ये सबसे मुश्किल घाटी है जिस पे आप चढ़ते हैं, फक्कू रकबा। एक दफ़ा एक्सेप्ट कर लिया ना, अब इसी को आगे लेकर चले। और अल्लाह ताला तो कहते हैं कि मैं किसी जान को उसकी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इसके बरक्स दूसरी शख्सियात की अंधी तकलीद और इनमें डूब जाना, अपनी सलाहियत को दफनाना है, अपने इरादे को कत्ल करना है और अपनी इनफरादियत को खो देना है। हालांकि मखलूक में हर एक की इनफरादियत मकसूद है। जी, मोनोपोली नहीं है किसी चीज़ पे। अल्लाह ताला अपनी मखलूक में हर एक को आगे लाना चाहता है और इसी का नाम टीम वर्क है। एंड टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हो, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले ना हो, किताब बेहतरीन है पढ़ाने वाला ना हो, तरीका सिखाने वाला कोई ना हो, सादी चीज़ें, यही चीज़ें पड़ी रहती हैं घरों में। और यकीन कीजिए, ये बुक जो आप इस वक्त फॉलो कर रहे हैं अगर, या सिर्फ टिप्स की सूरत में भी नोट कर रहे हैं, आप इसको लेकर खुद से पढ़ें और इसके बरक्स आप सब की कोशिशों के बाद जो चीज़ आपके सामने पेश हो रही है, इसका सिर्फ एक सेशन सुने, आप हैरान रह जाएंगे। इतना डिफरेंट एक्सपीरियंस। लेकिन हम कहते नहीं, मैं कर सकती हूँ ना, ठीक है करिए, कर सकते हैं, गुड, वेरी नाइस। लेकिन आप 50% पे क्यों राजी हैं? आप 100% नहीं भी ले सकते तो 60, 70, 80, 90% तो ले सकते हैं ना। शर्त एक है कि दिल को तासुब से पाक करना पड़ता है। काम करना नहीं आता, लेकिन लोग कहते हैं नहीं, चूंकि हमने भी तो कुछ करना है ना, हम करेंगे। और इस तरह फिर बैक गियर, कभी फ्रंट गियर, कभी बैक, कभी फ्रंट, कहाँ रहेंगे? देखिए ना, जो ड्राइवर कभी पीछे जाए, कभी फिर आगे आ जाए, फिर सारा दिन गोल गोल राउंड अबाउट पे घूमता रहे, एंड ऑफ द डे गाड़ी हीट अप हो चुकी होगी, इंजन ख़राब होने वाला होगा, लेकिन आप बैठे हुए हैं। तो क्या सीखा कि दूसरों का लुबादा ना ओढ़िए, अपना लुबादा ओढ़िए। अल्लाह ताला कुरान में एक बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, सूरत बनी इसराइल में आती है, कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही। तो हर बंदे की एक शाकिल है। देखिए, एक है शक्ल, आपकी शक्ल, मेरी शक्ल, फेस, फीचर्स, कलर कॉम्प्लेक्शन या कोई और, ये भी फ़र्क है। इवन ट्विंस की नहीं मिलती, और कभी कभी मिल भी जाती है, बट एक शाकिल है, ये अंदर है, इनर कोर है मेरी आपकी शक्ल का, ये मेरी पर्सनैलिटी, असल में ये है मैं, आई एम। मैं आपको अपने इनिशियल्स नहीं दे रही, इट्स ट्रू, आई एम जिसको आप कहते हैं ना, ये आपकी शाकिल है। शक्ल तो बचपन में और होती है, जवानी में और होती है, उधेड़ उम्र में और होने लगती है, शाकिला एक है। क्यों, अल्लाह के नबी ने कहा कि जो जहालत में अच्छे थे वो बाद में भी अच्छे हुए। हज़रत उमर को देखिए कि पहले भी बोल्ड थे ना, तो इस्लाम के बाद भी बोल्ड है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले भी बड़े सॉफ्ट थे, तो इस्लाम के बाद भी सॉफ्ट थे। तो अपनी शाकिला को पहचानिए, और इस पर कर चुके हैं बातें, क्योंकि हम सबको जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते। अल्लाह ताला कहते हैं वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। कभी अपने आप को भी तो शीशे में देखा करो, दूसरों को ही देखते रहते हो, तो दूसरे का लुबादा नहीं ओढ़ना। मिजाज के मुताबिक काम कीजिए, जिस काम में दिल लगे, जिसमें बोरियत ना हो, जिसमें थकन का एहसास ना हो, वो काम किया करें। ज़्यादा करेंगे, यानी इस वीक किस पे बात करती हूँ, किसको क्या ड्यूटी लेनी चाहिए, किसको क्या काम करना, किसको दूँ। देखिए दिन रात माशाल्लाह कोर्सेज शुरू हो रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, ऑनलाइन ऑन साइट। इस वक्त सबसे बड़ा इश्यूज जो मुझे लगता है कि हमारे स्टाफ या एडमिन्स का, वो ये है कि ड्यूटीज असाइंड। तो चलिए वीकेंड सेशन तो वैसे ही जिम्मेदारान और एडमिन्स के सेशंस है ना, तो कामयाबी में इस चीज़ का क्या हाल है। और बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करें, सैकड़ों की तादाद में वॉलंटियर फॉर्म्स हैं जिनको माशाल्लाह रोज़ जॉब्स मिल रही हैं, ली जा रही हैं, किसी से ली भी वापस दी जा रही है, दूसरी दी जा रही है, ये तो नेचुरल है। तो आपका मेरा इस वक्त का इशू ये है, और मैं अपने आप को सबसे पहले लेके आती हूँ। मुझसे अच्छी टीचर मिले तो वो लीजिए, मुझे क्यों आप लेके बैठे हैं, मेरे से अच्छे बहुत हैं आपके पास। मैं हक नहीं अदा कर रही, आप मुझसे लीजिए, मुझसे बच्चे रखवा लीजिए, मैं आपके बच्चे बड़े अच्छे रखूँगी इंशाल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं। हमें तो दीन का काम प्यारा है, हमें नाम की तो परवाह भी नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरह अपनी सलाहियतें पहचान कर काम करें, ना कि दूसरों की देखा देखी। खाना पकाने का काम मुझे ना दीजिएगा, मैंने तो बैठ के वो अनार से बातें करते रह जाना है, और केले को कहना है तुझे किसने बनाया, तो इतना नरम क्यों है, तो इतना गोरा क्यों है, थोड़ी देर बाद बाहर रहता है तो काला क्यों होता है। कभी मैं फ्रूट चाट बनाने लग जाऊँ, काली हो जाती है, अभी तक मेरी वो बातें नहीं ख़त्म हुई होती, वल्लाही इल्ला माशाल्लाह। तो अपने आप को पहचानिए, लेकिन ज़ाया ना कीजिए, खुदकुशी है ये। और किसी ने कहा ना कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, ये इसके टाइटल के साथ लिख लीजिए। ये है अपनी शाकिला को पहचानना। अल्लाह के नबी की कामयाबी क्या थी कि आपने सहाबा कराम को एक गुलदस्ते की शक्ल दे दी, इसमें से हर एक को उसकी शाखिला के मुताबिक काम सौंपे। मसलन अली को हुदै को ज़ा दिया, मुआज़ को इल्म का शोभा दिया, उबै बिन काब को कुरान की खूबियाँ दिखा दी, और खालिद को जिहाद के मैदान में डाल दिया, हसान शेर व शायरी में थे, कैस बिन साबित खिताबत के लिए थे। ये काम आप भी कीजिए, बस इसी नक्शे में अपने नाम लिख लीजिए। हज़रत अली को अगर आप डाल देते जिहाद में, और वो उसमें भी अच्छे थे वैसे, शेर व शायरी में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके अंदर जो हिकमत कूट कूट के भरी थी ना, तो काजी उनको ही होना चाहिए था। यानी हज़रत अली तो जिहाद कर लेते, लेकिन अली जैसा काजी कोई ना बनता। ये है दो चीज़ें देखने की, एक होती है उस बंदे की खूबी क्या है, और दूसरा ये कि आपकी ज़रूरत कौन पूरी करता है। बस ये असाइन करने का बेहतरीन नुस्खा है, अल्लाह ताला हमें भी वहीं खपा दे। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, बात बड़ी अहम है। पुर्जा तो बड़ा अच्छा है, पर वो गाड़ी का पुर्जा है, आप उसको वहां से निकाल कर मोटरसाइकिल में लगा दें तो क्या होगा। कई दफ़ा हम लोगों को इस तरह ज़ाया कर देते हैं, गाड़ियों के पुर्जे मोटरसाइकिलों में लगाते हैं, और इसी तरह से वॉशिंग मशीन के पुर्जे सिलाई मशीन में लगाना चाहते हैं। वो मशीन पे भी जुल्म है, बंदे पे भी जुल्म है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है अगर हम सही जगह पे नहीं खपे हुए। और ये जो बात है ना, सारे कामों में मुझे डाल दें, तो फिर वही मिसाल है कि ब्रेक की ज़रूरत गाड़ी में थी, ब्लेंडर में तो नहीं थी, और क्लच तो गाड़ी में होता है, वो टोस्टर में तो नहीं होता। तो याद रखिए, अपने आप को पहचानिए, ज़ाया ना करें, ज़िंदगी बड़ी कीमती है। आप वक्त गुजार दें और करेंसी इस्तेमाल ना करें, बाद में वो बेकार हो जाए, तो कब्र में जाने से पहले खुद को ज़ाया होने से बचाएं, डाई एम्प्टी, खाली होके मरे। कई लोग अपनी खूबियाँ लेकर कब्र में चले जाते हैं। मैं कितनी खुशकिस्मत है आप, अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल गया जो आपकी कीमत दे सकता है। आपसे मेरे से लाखों गुना अच्छे लोग बाहर रुल रहे हैं, प्लेटफॉर्म कोई नहीं। कभी मैं अपने दिल के दुख सुनाऊं, जो लोगों के दुखों को सुनकर मेरा दिल दुखी होता है। काम करना चाहते हैं, कहाँ करें, किससे करें, टीम नहीं, लोग पूछते हैं ये सब कैसे होता है। कभी कभी बेतकल्फी में लोग बहुत बातें पूछते हैं, कैसे हो गया ये सब। अच्छा, एक दो जगह ऐसे ट्रिप्स में ये बातें हुई जो मैं रिलैक्सेशन के लिए आपको सुना रही हूँ, ये सब कैसे होता है। तो मैंने उनको बताया कि माशाल्लाह हर जगह लोग, मैं तो जिस दुनिया के मुल्क में गई हूँ मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मिट्टी में हाथ डालो तो सोना बनती है। पहले से अच्छे लोग मिले माशाल्लाह। जन्नती भी जब अपनी बीवियों के पास जाएगा ना तो हर बीवी उसको पहले से अच्छी लगेगी। तो मैं अक्सर उस हदीस को सोचती हूँ तो मुस्कुराती हूँ कि हर जगह ही बड़ी नरम बड़ी जरखेज़ मिट्टी है। तो वो कहते हैं नहीं, वो तो लोग तो होते हैं, ये पैसे कहाँ से आते हैं। यानी जब अलबरका इंट्रोड्यूस हुआ आप लोगों ने, माशाल्लाह जो जानते हैं साथी उनको तो पता ही है, 2018 के दौरे कुरान के बाद पहली ईंट पड़ी थी उस जगह पे। उससे पहले समझे एक छोटा सा लेक्चर, और वो स्टोरी सुननी है तो आप वेबसाइट पे जाकर जोराबाद प्रोजेक्ट को जाकर पढ़ लीजिए कैसे ये हुआ। कुछ बातें बताने की होती हैं, कुछ होती नहीं है, दीवानगी लगेगी लोगों को, खुदनुमाई लगेगी, इसलिए नहीं बताते वो बातें। तो अब माशाल्लाह वहाँ अल्लाह की रहमत है, तीसरा कोर्स शुरू होने लगा और बिल्डिंग और इमारत और जगह वो तो साथ साथ चल रही हैं। देखिएगा अल्लाह ने ज़िंदगी में हमारे वो वक्त दिखाया ना दिखाया, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी, ये मेरा अल्लाह पे यकीन है। तो लोग कहते पैसे कहाँ से आते हैं, ये कौन देता है चंदा। भाई हमने अल्लाह ना करे कभी चंदा नहीं मांगा, जितनी मुझे चिड़ लफ्ज़ चिंदे से है ना उतनी तो किसी से नहीं। चांद से बड़ा प्यार है, चंदा का लफ्ज़ बुरा लगता है। चंदा मांग लें, अल्लाह अकबर, खाना काबा में चंदा मांगते हैं लोग, देखें घर की शान। काम कीजिए, लोग पीछे फिरते हैं, कुछ दे जाओ आप, काम कीजिए, लोग कहेंगे कुछ ले लो क्योंकि आप अच्छे लोग लगते हैं, आप हमारा सही लगाएंगे। मैं तो $1 ना किसी को अपना दूं अगर मेरा सही ना लगे। तो ये ट्रस्ट बनाइए। और फिर लुबादे की बात हो तो मुसलमानों को गैर मुसलमों के लुबादों में नहीं आना। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हु, जो किसी कौम की मुमासलत करेगा ना उनमें, मैं दावत दूंगी। ऑफ कोर्स एक दावत ही दे सकती हूँ, हुक्म तो किसी को भी नहीं दिया जाता, स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते तो आपको क्या दूँ। आज सुबह की सूरत मायदा की आयत बायत की तफसीर सुन ले, एक आयत सिर्फ, आयत नंबर 3, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। उसकी बात याद आ गई इसलिए बोल दिया। जिन्होंने सुना है उन्होंने सुना है माशाल्लाह, जिन्होंने चलते फिरते सुना है वो दोबारा सुने, बैठ के सुने, नोट्स लें। उम्मते मुस्लिमा से मतलूब ही ये था जो आज भूला पड़ा, सबसे मुतासिर है इस्लाम से मुतासिर नहीं है। क्यों कहा अल्लामा इकबाल ने अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वामे मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। तो अपना आपको पहचानिए, मिल्लत के अफराद इनफरादी तौर पर भी किसी और लुबादे में नहीं आ सकते, इसी तरह इज्तमाही तौर पे भी दूसरों के लुबादों में नहीं आ सकते। अबू बकर अबू बकर है वो उमर नहीं बन सकते, और उमर उमर है वो अबू बकर नहीं बन सकते। मिजाज फ़र्क, आते फ़र्क, सलाहियतें फ़र्क, ये अल्लाह की निशानियों में इसको कबूल कीजिए। अल्लाह ने हर दाई दीन को भी अलग खूबी दी होती है, हर उस्ताद की एक अपनी खूबी होती है, हर इमाम की एक खूबी है, हर मुफ्ती का एक अपना मिजाज है। इमाम बुखारी एक रात में 300-300 मसले अखज़ कर लेते थे, एक एक आयत से। दूसरे पास से गुजर जाते तो कहते हमें नहीं पता लगता, आपको कहाँ से दिखती, किसी को एक खामी नहीं दिखती। दूसरा जाता कहता है 10 खामियां तो ये हैं, 11वीं जाके चुन ले। तो अल्लाह से वो नज़र मांगिए। और इसी तरह आप देखिए मीडिया पे आकर कोई बोलता है, कोई एक्टर है एक्ट्रेस है, कोई लिबास पहनता है, कोई कुछ करता है, कोई जुमला बोलता है, उनको सजता होगा, आपको मुझे नहीं सजता। उनका अपना असल, आपका अपना असल, तो काम वो कीजिए जो आपको जचता हो।